ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं सीमा शर्मा। आरंभ में आज के मुख्य समाचार शीर्षक। कोरोना संक्रमण के जोखिमों के मद्देनजर अत्यावश्यक काम के अलावा काठमांडू घाटी प्रवेश न करने का स्वास्थ्य मंत्रालय ने सर्वसाधारण से किया आग्रह। आज देश भर में 2220 कोरोना संक्रमण के नए मामले आए सामने। 2044 हुए संक्रमण मुक्त, 8 की हुई मौत। सुदूर पश्चिम प्रदेश के 3 विमान स्थलों का हुआ उद्घाटन। देश की समृद्धि के लिए सरकार दे रही है प्राविधिक शिक्षा पर जोर, शिक्षा मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल का कथन। और दुनिया में कोरोना वायरस के कारण 3,49,00,000 से अधिक हुए संक्रमित, 10,00,000 से अधिक की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। आज देश भर में कोरोना संक्रमण के 2,120 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही अब तक कोरोना संक्रमित लोगों की कुल संख्या 84,570 हो गई है। इनमें से काठमांडू के 1,001, ललितपुर में 109, भक्तपुर में 67, सुनसरी में 122, मोरंग में 111, रूपंदेही में 98, कैलाली में 93, रौथट में 82, चितवन में 75 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। इनमें से सक्रिय संक्रमितों की संख्या 21,302 है। इसी तरह आज 2,044 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त भी हुए हैं। इसके साथ ही अब तक कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या 62,740 हो गई है। इसी तरह आज 2 महिलाएं और 6 पुरुष की मौत होने के बाद संक्रमण के कारण मरने वालों की संख्या 8 हुई है। इसके साथ ही अब तक संक्रमण के कारण मरने वालों की संख्या 528 पहुंच गई है। ये जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के नियमित प्रेस ब्रीफिंग में मंत्रालय के प्रवक्ता प्राध्यापक डॉ जागेश्वर गौतम ने दी। साथ ही डॉ गौतम ने कोरोना संक्रमण के जोखिमों के मद्देनजर सर्वसाधारण से आग्रह किया कि बिना किसी महत्वपूर्ण काम के काठमांडू घाटी में प्रवेश न करें। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के 3 सलाहकारों और प्रमुख स्वकीय सचिव में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रधानमंत्री के प्रमुख राजनीतिक सलाहकार विष्णु रिमाल, परराष्ट्र मामलों के सलाहकार राजन भट्टराई, प्रेस सलाहकार सूर्य थापा और प्रमुख स्वकीय सचिव इंद्र भंडारी में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा की आज के लिए तय की गई सचिवालय की बैठक को कल तक के लिए स्थगित किया गया है। ये जानकारी नेकपा सचिवालय ने दी। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश भट्टराई ने आज सुदूर पश्चिम प्रदेश के 3 जिलों के विमान स्थलों का उद्घाटन किया। बैतरी के पाटन, बाझांग के चैनपुर और डोटी के दीपायल विमान स्थल का उद्घाटन मंत्री भट्टराई ने किया। मौके पर मंत्री भट्टराई ने लंबे समय से बंद रहे विमान स्थलों की स्तरोन्नति की जाने की प्रतिबद्धता जताई। नेपाल ने परमाणु हथियारों के लिए आवंटित धन एवं अन्य स्रोतों का समग्र शांति और मानवता के हित के लिए दीर्घकालीन विकास योजनाओं में लगाने की बात पर जोर दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की 75वीं महासभा के आणविक अस्त्र शस्त्रों के पूर्ण उन्मूलन संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आज अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुई उच्च स्तरीय बैठक में नेपाल की ओर से ये बात रखी गई। परराष्ट्र मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावाली ने अपने वीडियो संबोधन के जरिए कहा कि आणविक हथियारों की काली छाया के रहने तक विश्व सुरक्षित नहीं माना जा सकता है। आगे उन्होंने कहा कि मौजूदा कोविड-19 की दवा मानव जीवन की रक्षा बेशक करेगी, लेकिन आणविक अस्त्र से अमूल्य जीवन को नहीं बचाया जा सकता। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। वक्त है व्यावसायिक विश्राम का।
ल्यान्डलाइन फोनमा समस्या छ,
1498 मा फोन गर्नुस्।
समस्या पोस्टमेनमा नि आयो,
1498 मै फोन गर्नुस्।
ओहो सम्झे, प्रिपेड को पुक नम्बर पनि चाहिए थियो,
त्यसको लागि पनि 1498 मै फोन गर्नुस्।
नेपाल टेलिकमको जीएसएम सीडीएमए मोबाइल तथा ल्यान्डलाइनमा कुनै पनि समस्या आएमा जे जे सोध्न मन छ 1498 मा फोन गरेर सोध्नुहोस्। यो नम्बरमा फोन गर्दा पैसा लाग्दैन।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल ने देश की समृद्धि के लिए दक्ष जनशक्ति का निर्माण वर्तमान की आवश्यकता है और इसलिए सरकार का जोर प्राविधिक और व्यावहारिक शिक्षा पर है। आज महोत्तरी के बर्दीवास में नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान की प्रदेश नंबर 2 स्तरीय शाखा कार्यालय का उद्घाटन करने के दौरान मंत्री पोखरेल ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सभी स्थानीय तहों में प्राविधिक शिक्षा पहुंचाने के सरकार के उद्देश्य के मुताबिक अब तक 637 पालिकाओं में प्राविधिक शिक्षा का पठन पाठन शुरू हो चुका है। नेपाल भारत सीमानाका झुलाघाट के बन्द होने के बैतरी के भारतीय पेन्सनधारियों को समस्या झेलनी पड़ रही है। भारतीय सेना और अन्य भारतीय सरकारी कार्यालयों से सेवानिवृत्त नेपाली नागरिकों का पेंशन भुगतान भारतीय बैंक से होता है, इसलिए नाका बंद होने के कारण वे लोग समस्या में है। पेंशन पर ही आश्रित लोगों को रोजमर्रे की जरूरतों को पूरा करने में भी परेशानी हो रही है। ये बात भूतपूर्व सैनिक संघ बैतरी के संस्थापक अध्यक्ष जीत सिंह थापा ने बताई। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जिला प्रशासन को 15 दिन पहले ही नाका खोलने की पहलकदमी करने के लिए कहा था, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। बागलुंग ढोरपाटन के बाढ़ प्रभावितों के राहत के लिए स्थापित किए गए कोष में अब तक 1,65,00,000 रूपये की सहयोग राशि संकलित हो चुकी है। नगर प्रमुख देव कुमार नेपाली के मुताबिक कोष की रकम को बेघर हुए परिवारों के घर पुनर्निर्माण में खर्च करने की योजना है और अभी भी सहयोग राशि प्राप्त होने का क्रम जारी है। बता दें कि बाढ़ व भूस्खलन के कारण ढोरपाटन नगर पालिका वार्ड नंबर 7, 8 और 9 के सैकड़ों परिवार बेघर हो चुके हैं। देश के अलग अलग स्थानों में हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और अन्य 8 लोग घायल हो गए। नारायणगढ़ मुगलिंग सड़क खंड अंतर्गत चितवन की भरतपुर नगर महानगर पालिका वार्ड नंबर 29 सिमलताल में हुए सड़क हादसे में 1 व्यक्ति की मौत हो गई और अन्य 7 घायल हो गए। नारायणगढ़ से मुगलिंग की तरफ जा रहे ऑटो रिक्शा और मुगलिंग से नारायणगढ़ की तरफ आ रही मोटरसाइकिल के आपस में टकराने से ये हादसा हुआ। इस हादसे से मोटरसाइकिल पर पीछे सवार रहे तनहू की घीरिंग गांव पालिका वार्ड नंबर 4 के 35 वर्षीय जीत बहादुर राणा की हुई मौत की जानकारी पुलिस के हवाले से हमारे संवाददाता ने दी। बुरी तरह जख्मी हो चुके राणा की मौत चितवन मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान हुई थी। हादसे में मोटरसाइकिल चालक, ऑटो चालक व ऑटो में सवार यात्रियों सहित 7 लोग घायल हैं। घायलों का इलाज चल रहा है। दूसरी तरफ खोटांग की दिक्तेल रूपाकोट मजुआ गढ़ी नगर पालिका से दिपरुंग चुईचुम गांव पालिका की तरफ जाते हुए ट्रैक्टर के बीती रात सापसू खोला के नजदीक दुर्घटनाग्रस्त होने से चुईचुम गांव पालिका वार्ड नंबर 7 टेम्मा के 26 वर्षीय प्रकाश राय की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में अन्य 1 व्यक्ति घायल हो गया। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 3,49,46,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 2,59,75,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं 10,34,000 से अधिक लोगों की जान चली गई है। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित देशों में अमेरिका सबसे पहले स्थान पर है, जहां 75,63,000 से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 2,13,000 से अधिक की मौत हो चुकी है। इसी तरह भारत में 65,09,000 से अधिक संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 1,01,000 से अधिक की मौत हो चुकी है। इसी तरह ब्राजील में 48,82,000 से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 1,45,000 से अधिक की मौत हो चुकी है। इसी तरह रूस में 12,04,000 से अधिक संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 21,000 से अधिक की मौत हो चुकी है। और कोलंबिया में 8,41,000 से अधिक संक्रमित हो चुके हैं, तो वहीं 26,000 से अधिक की जानें भी चली गई है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार शीर्षक एक बार फिर से। कोरोना संक्रमण के जोखिमों के मद्देनजर अत्यावश्यक काम के अलावा काठमांडू घाटी प्रवेश न करने का स्वास्थ्य मंत्रालय ने सर्वसाधारण से किया आग्रह। आज देश भर में 2,220 कोरोना संक्रमण के नए मामले आए सामने। 2,044 हुए संक्रमण मुक्त, 8 की हुई मौत। सुदूर पश्चिम प्रदेश के 3 विमानस्थलों का हुआ उद्घाटन। देश की समृद्धि के लिए सरकार दे रही है प्राविधिक शिक्षा पर जोर, शिक्षा मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल का कथन। और दुनिया में कोरोना वायरस के कारण 3,49,00,000 से अधिक हुए संक्रमित, 10,00,000 से अधिक की हुई मौत। इसी के साथ हिंदी समाचार बुलेटिन से कल तक के लिए दीजिए इजाजत। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। शुभ रात्रि।